हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत सोफे पर निवेदिता के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मॉम, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपनी बहू पर भरोसा है ना, वो सब संभाल लेगी। निवेदिता ने रोते हुए कहा, समझदार है तो क्या हुआ, उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। मुझे सिर्फ रूहान के लिए बुरा नहीं लग रहा है, मैं अनाही को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, और उसके साथ भी ऐसा होते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं वो बच्ची सब कुछ कैसे संभालेगी। इतना बोलकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्द से जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शाम के करीब 3 बजे विहा कॉलेज से घर आई, जो होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए निमानी हाउस में एंटर हुई। जब उसकी नज़रें सामने मायूसी से बैठी निवेदिता पर पड़ी तो विहा देखते ही समझ गई कि निवेदिता आज बहुत परेशान है। वो जल्दी से उनके पास आई और अपना बैग उतारकर वहां टेबल पर रखते हुए उनके पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, सासू माँ, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं, आपकी तबीयत ठीक है ना। इतना बोलकर विहा ने जल्दी से निवेदिता के माथे को अपने हाथों से छूकर देखा, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल था। उसकी मासूम नज़रें फिर से निवेदिता के चेहरे पर आ गईं। वहीं निवेदिता ने भी ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, तुमने पहली बार उपवास किया है ना, तुम्हें भूख तो नहीं लगी। विहा ने जल्दी से कहा, हाँ सासू माँ, तभी तो मैं इतनी खुश हूँ। आपको पता है मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, और थोड़ी देर में तो रात हो जाएगी और फिर चंदा मामा निकल आएंगे, तो मुझे ज़्यादा देर भूखा रहना भी नहीं पड़ेगा। क्या आप बस इसलिए परेशान हो कि आपकी बेटी कहीं भूख से परेशान न हो गई हो। विहा की बात सुनकर ना चाहते हुए भी निवेदिता हल्के से मुस्कुरा उठी। उसने हमेशा ही रहते हुए कहा, तुम जो कपड़े चेंज करो और फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर विहा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। अब निवेदिता को विहा के लिए भी डर लग रहा था, कहीं वो अनाही के यहाँ से जाने की खबर सुनकर खुद भी न चली जाए, वरना उनके लिए सब कुछ संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। विहा जैसे ही कमरे में गई तो उसने देखा कि वेदांत सोफे पर लेटा हुआ था। उसने सोफे की आर्मरेस्ट पर अपना सर टिका रखा था और अपनी एक हाथ से अपनी आँखों को ढक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नींद आ गई हो। विहा धीमे कदमों से उसके पास गई और अचानक ही वेदांत के सीने पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाई, हेलो पतिदेव। और वेदांत एकदम से हतप्रभ होकर सोफे से उठने लगा। इसी चक्कर में वो सोफे से नीचे गिर गया और विहा जोर जोर से हंसने लगी। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैंने आपको डरा दिया। वेदांत में गुस्से में विहा को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता है ऐसे किसी को डराने से उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। विहा ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और फिर मायूस होते हुए बोली, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और फिर अपना बैग साइड में रखते हुए खुद वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने अपने सर पर हाथ रखता हुआ कहा, आज मुझे उससे कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि उसने उपवास कर रखा है। कंट्रोल वेदांत, तुम उससे पर गुस्सा नहीं कर सकते हो, खूब अच्छी है ना समझ है, और मैं अनलकी हूँ क्योंकि वो साथ में मेरी बीवी भी है। वेदांत खुद को ही मोटिवेट कर रहा था अगले कुछ घंटे के लिए विहा को कैसे संभालना है ये सोचते हुए। शाम के करीब 7 बजे सहगल हाउस में अजीब सी शांति पसरी थी। अनाही का रो रो कर बुरा हाल था, उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। सई काशी कमरे के बाहर खड़ी थी और अनाही से मिन्नत कर रही थी कि वो दरवाज़ा खोल दे। अंदर से अनाही ने थोड़ा तेज़ आवाज में कहा, माँ, आप क्या चाहती हैं, अपने जैसा कहा मैंने कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके पीछे इतना बड़ा कारण है। अब रूहान जी को लग रहा होगा कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये तो मैं भगवान के कहने पर भी नहीं मानूंगी कि भगवान जी ने मुझे चीट किया है। मानती हूँ वो पहले किसी लड़की के साथ थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने शादी के बाद मुझे धोखा दिया है। हर इंसान का अपना अतीत होता है, अगर उसको पकड़ के रखेंगे तो आने वाली जिंदगी कैसे जिएंगे। मुझे तो आपको उसके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, जब उसका मन होगा तो खुद ब खुद खोल लेगी। काशी दोनों बाप और बेटी के बीच फंस चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो तेज कदमों से चलकर राधेश्याम के पास आई और फिर उनके पास बैठते हुए बोली, ऐसे मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी बेटी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आज उसका उपवास है, मेरा दिमाग सही निकल गया था, और अगर वो खाना नहीं खाएगी तो ज़रूर दिक्कत हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप बात करिए ना उससे, वो आपकी बात सुनेगी। राधे श्याम ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, और आपको जो लगता है कि मेरे कहने से वो दरवाज़ा खोलेगी और उपवास भी खोलेगी, जब उसे मेरी इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि उसे उस धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। काशी ने गुस्से में कहा, आप किसी को बिना परखे कैसे उसे धोखेबाज कह सकते हैं? वो आपके बड़े जमाई हैं, उनके बारे में ऐसी बातें मत करिए। मेरा तो सर दर्द होने लगा है, ना आपको कुछ समझना है ना आपकी बेटी को कुछ समझना है। उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर राधे श्याम ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, पूरी दुनिया से जीतने वाला इंसान आखिर में अपने बच्चों से हार जाता है। ठीक है, अगर मेरे बोलने से कुछ होता है तो मैं बोल कर देख लेता हूँ। इतना बोलकर वो धीमे कदमों से अनाही के कमरे के सामने गए और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, तुम्हारी माँ ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है, बस तुम जमाई जी की फ़ोटो देखकर खाना खा लेना। जब चांद निकले उसका इलाज हो, तुम्हें करना है वो करो, चाहे एक दिन कमरे में बंद रहना हो या एक महीना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार अनाही ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा पति मरा नहीं है अभी जो मैं उसकी फ़ोटो को देखकर खाना खाऊं। पापा प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मन की तबीयत खराब हो रही होगी, आप उनका ख्याल रखिए, मैं खुद को संभाल लूँगी, अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। राधे श्याम ने गुस्से में मुट्ठियाँ भींची और फिर तेज़ कदमों से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चले गए। काशी, जो इंतज़ार कर रही थी अनाही के दरवाज़ा खोलने की, उसने अपना सर पीट लिया, जहाँ बात कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो भी जल्दी से राधे श्याम के पीछे पीछे उसके कमरे में जाने लगी। वहीं अनाही ने अपना फ़ोन निकालकर जल्दी से रूहान को कॉल किया। रूहान इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो कैसे अपनी मैडम जी को भूखा रहने दे सकता था। जब से उसे पता चला था कि अनाही उसे देखे बिना खाना नहीं खाएगी, इस वक्त निकल पड़ा था सिरोही के लिए। उसने नॉर्मल घर के कपड़े पहने थे, काले रंग का ट्राउज़र और उसके ऊपर हाफ स्लीव्स कॉलर वाली सफ़ेद टी शर्ट। उसके बाल बेदर्दी से उसकी माथे पर बिखरे थे, जिससे उसकी आँखें भी हल्की कर हो रही थीं, जो कि रोने के कारण लाल हो गई थीं। उसने अपने फ़ोन पर एक नज़र डाली और उस पर फ्लैश होते मैडम जी नाम देखकर उसकी धड़कनें जैसे रुकने को हो गईं। उसने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाया और फिर कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। सामने से अनाही ने रोते हुए कहा, रूहान जी, मुझे नहीं पता था कि पापा मुझे ऐसे ले जाएंगे, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैंने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। अनाही की बात सुनकर रूहान ने सुकून के साथ सांस ली और आंखें बंद करके सीट के रेस्ट पर अपना सिर टिका लिया। उसकी सांसों की आवाज़ सुनकर अनाही ने आगे कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा और बाकी सबका भी, और हो सके तो विहा को भी संभाल लेना, वो बहुत ज़िद करेगी यहाँ आने की, पर उसे यहाँ मत आने देना। अनाही को नहीं पता था कि उसके पति में इतना सब्र नहीं है, वो खुद उसके पास आ रहा था।